दानियल की पुस्तक संख्या 88। झूठी पश्चात वर्षा का पर्दाफाश 11 सितंबर 2001 से भविष्य सूचक यात्रा।
स्वर्गदूत के उतरते ही जो परीक्षा प्रक्रिया आरंभ होती है वो इस परीक्षा द्वारा प्रदर्शित होती है कि क्या स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तक लेकर उसे खाना है या नहीं। जिन्होंने वो संदेश खाना चुना वे फिर एक निराशा के लिए नियत थे, जबकि जिन्होंने खाने से इनकार किया वो समूह पीछे रह गया। जो छोटी पुस्तक खाई जानी थी वो उस संदेश के ज्ञान की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसकी मुहर सबसे पहले अंत का समय पर या तो 1798 में या 1998 में खोली गई थी, और बाद में उसे ऐसे संदेश के रूप में औपचारिक रूप दिया गया जो उस समय जीवित पीढ़ी को बढ़े हुए ज्ञान के प्रकाश के प्रति जवाबदेह ठहराता था। दोनों ही इतिहासों में जैसे ही इस्लाम की भविष्यवाणी पूरी हुई तब स्वर्गदूत के हाथ में खाने को दिया गया संदेश या तो स्वीकार कर लिया गया या अस्वीकार कर दिया गया। यदि पुस्तक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया संदेश अस्वीकार कर दिया जाता है तो जो ऐसा करते हैं और फिर भी स्वयं को परमेश्वर के चुने हुए होने के अपने दावे को बनाए रखना चाहते हैं वे एक नकली अंतिम वर्षा संदेश उत्पन्न करने के लिए विवश हो जाते हैं।
11 सितंबर 2001 को एडवेंटिज्म की पीढ़ियों के पुराने विद्रोह फिर से परीक्षा के विषय बना दिए गए। हबक्कूक के दूसरे अध्याय में उस भविष्य सूचक इतिहास में होने वाले एक विवाद की पहचान की गई है जो वहां दर्शाया गया है और जो 10 कुंवारियों के दृष्टांत की समानांतर भविष्य सूचक रेखा है। जब पहरेदार ने 10 कुंवारियों के दृष्टांत के इतिहास में पूछा कि वो क्या उत्तर दे, तब उसे ये आज्ञा दी गई, दर्शन को लिख और पट्टिकाओं पर उसे स्पष्ट कर दे। मिलरपंथी इतिहास के पहरेदारों ने 1842 में 1843 का चार्ट तैयार किया और उसका बनना एक मार्ग चिन्ह बन गया। वो हबक्कूक अध्याय 2 का दर्शन ही था जिसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट किया गया था जो अंत में बोलना था।
11 सितंबर 2001 के थोड़े ही समय बाद जिन्होंने तीसरे हाय में इस्लाम की गतिविधि को पहचाना वे यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर लौटने और उनमें चलने के लिए प्रेरित हुए। उन पुराने मार्गों ने यह स्पष्ट किया कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 13 के 3 हाय इस्लाम की भविष्यवाणी संबंधी भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके तुरंत बाद फ्यूचर फॉर अमेरिका ने मिलराइट्स के समांतर इतिहास के ठीक उसी चरण पर हबक्कूक अध्याय 2 के दोनों चार्टों का पुनरुत्पादन शुरू किया। इन दोनों चार्टों को एक मार्ग चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसका प्रतिनिधित्व 1842 में 1843 के चार्ट के निर्माण द्वारा किया गया था।
मई 1842 में मैसाचुसेट्स के बॉस्टन में एक सामान्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक के आरंभ में हेवरेल के भाई चार्ल्स फिच और अपोलोस हेल ने दानियल और यूहन्ना की चित्रात्मक भविष्यवाणियां प्रस्तुत की जिन्हें उन्होंने भविष्य सूचक संगफनखाओं सहित कपड़े पर इस प्रकार चित्रित किया था कि उनकी पूर्ति प्रदर्शित होती थी। भाई फिच ने सम्मेलन के सामने अपने चार्ट से समझाते हुए कहा कि इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करते समय उनके मन में विचार आया कि यदि वे यहाँ प्रस्तुत की गई जैसी कोई वस्तु तैयार कर सकें तो विषय सरल हो जाएगा और उसे श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना उनके लिए आसान हो जाएगा। यह हमारे मार्ग में और अधिक प्रकाश था। इन भाइयों ने वही किया था जो प्रभु ने 2408 वर्ष पहले हबक्कूक को उसके दर्शन में दिखाया था, ये कहते हुए, दर्शन को लिख और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट कर दे ताकि जो पढ़े वो दौड़ते हुए भी पढ़ सके, क्योंकि ये दर्शन अभी नियत समय के लिए है। हबक्कूक 10:2। विषय पर कुछ चर्चा के बाद ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस जैसे 300 चार्टों का लिथोग्राफ कराया जाए और ये शीघ्र ही कर दिया गया। उन्हें द 43 चार्ट्स कहा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था जो सेफ बेट्स की आत्मकथा 317 जब मूल विश्वास पर स्थिर रहते हुए द्वितीय आगमन के व्याख्याताओं और पत्रों ने एक मत होकर ये साक्ष्य दिया कि चार्ट का प्रकाशन हबक्कूक 2:2:3 की पूर्ति था। यदि चार्ट भविष्यवाणी का एक विषय था और जो इसका इनकार करते हैं वे मूल विश्वास को छोड़ देते हैं तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ईसा पूर्व 650 वो वर्ष था जिससे 2300 दिनों की गणना की जानी थी। ये आवश्यक था कि 1843 प्रथम प्रक्विशस समय हो ताकि दर्शन ठहरे अथवा ठहरने का एक समय हो जिसमें कुंवारियों का दल समय के इस महान विषय पर ऊँगी और सोए रहे, ठीक इससे पहले कि उन्हें मध्यरात्रि के क्रंदन द्वारा जगाया जाए। जेम्स व्हाइट, सेकेंड एडवेंट रिव्यू एंड सैबथ हेरल्ड वॉल्यूम आई नंबर 2। अब हमारा इतिहास बताता है कि विलियम मिलर जिन कालानुक्रमिक चार्टों से शिक्षा दे रहे थे उन्हीं से सैकड़ों लोग भी शिक्षा दे रहे थे, सब एक ही तरह के। तब संदेश में एकता थी, सभी का विषय एक ही था, प्रभु यीशु का एक निश्चित समय पर 1844 में आगमन। जोसेफ बेट्स, अर्ली एसटीए पैम्फलेट्स, 70।
11 सितंबर 2001 के तुरंत बाद के समय में 1853 और 1850 के चार्टों का पुनर्मुद्रण हबक्कूक अध्याय 2 की उतनी ही पूर्ति था जितनी 1845 में 1853 के चार्ट का प्रकाशन था। तालिकाओं का निर्माण हबक्कूक अध्याय 2 के वृत्तांत का एक हिस्सा है और ये होना ही था। 11 सितंबर 2001 को 1863 का विद्रोह फिर से उन लौदिका के एडवेंटिस्टों द्वारा दोहराया गया जिन्होंने यिर्मयाह के पुराने मार्ग पर लौटने से इनकार किया।
शत्रु हमारे भाइयों और बहनों के मन को उन लोगों को तैयार करने के कार्य से विमुख करने का प्रयत्न कर रहा है जो इन अंतिम दिनों में स्थिर खड़े रह सके। उसकी कुतर्कपूर्ण युक्तियां इस प्रकार रची गई हैं कि मनों को इस समय के संकटों और कर्तव्यों से दूर ले जाएं। वे उस ज्योति को बहुत ही अल्प मूल्य की ठहराते हैं जिसे मसीह अपने लोगों के लिए यूहन्ना को देने हेतु स्वर्ग से लाए। वे शिक्षा देते हैं कि जो दृश्य अब हमारे सामने आने वाले हैं वे विशेष ध्यान पाने के लिए पर्याप्त महत्व नहीं रखते। वे स्वर्गीय उद्गम वाले सत्य को निष्प्रभावी कर देते हैं और परमेश्वर की प्रजा को उनके अतीत के अनुभव से वंचित करके उसके स्थान पर एक मिथ्या विज्ञान दे देते हैं। यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े होकर देखो और प्राचीन पथों के विषय में पूछो कि उत्तम मार्ग कौन सा है और उसी में चलो। यिर्मयाह 1:6-16। कोई भी हमारी आस्था की नींवों को उखाड़ फेंकने का प्रयास न करे। वे नींवे जो हमारे कार्य के प्रारंभ में वचन का प्रार्थनापूर्ण अध्ययन और प्रकाशना के द्वारा डाली गई थीं, इन नींवों पर हम 50 से अधिक वर्षों से निर्माण करते आ रहे हैं। लोग ये मान सकते हैं कि उन्हें कोई नया मार्ग मिल गया है, कि वे पहले से डाली गई नींवों से भी अधिक मजबूत नींव डाल सकते हैं, पर ये एक बड़ा धोखा है। जो नींव डाली जा चुकी है उसके सिवाय कोई दूसरी नींव कोई मनुष्य नहीं डाल सकता। अतीत में अनेक लोगों ने नई आस्था गढ़ने, नए सिद्धांत स्थापित करने का बीड़ा उठाया, पर उनकी इमारत कितने समय तक खड़ी रही वो शीघ्र ही गिर गई क्योंकि वो चट्टान पर स्थापित नहीं थी। टेस्टिमोनीज खंड 8:46-87।
यिर्मयाह ही बताता है कि पुराने मार्गों पर चलना विश्राम पाना है और ये विश्राम ही अंतिम वर्षा है जो तब शुरू हुई जब 11 सितंबर 2001 को राष्ट्र क्रोधित हुए और न्यूयॉर्क सिटी की विशाल इमारतें ढह गईं। जिन्होंने तब उस संदेश को ग्रहण किया वे हबक्कूक के वे प्रहरी बन गए जिन्हें दर्शन लिखो और उसे स्पष्ट करो का आदेश था। यिर्मयाह हिनी मरहुम प्रहरियों की पहचान विश्राम के समय में करता है जो कि अंतिम वर्षा है।
यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े होकर देखो और प्राचीन पथों के विषय में पूछो कि उत्तम मार्ग कहाँ है और उसी में चलो, तब तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे। परंतु उन्होंने कहा, हम उसमें न चलेंगे। फिर मैंने तुम्हारे ऊपर पहरे वाले ठहराए ये कहते हुए, नरसिंगे के शब्द पर ध्यान दो। परंतु उन्होंने कहा, हम ध्यान न देंगे। यिर्मयाह 6:16-17।
वो तुरही जिसे उन्हें बजाना था, मिलराइट, इतिहास की दूसरी विपत्ति की छठी तुरही है और अंत के दिनों में वो तीसरी विपत्ति की सातवीं तुरही है। हबक्कूक के प्रहरी जो यिर्मयाह के प्रहरी हैं एक चेतावनी का संदेश सुनाते हैं जिसे 1888 के विद्रोह में अस्वीकार कर दिया गया था। 1888 में अस्वीकार की गई छठी तुरही लाओदीकिया के लिए दिया गया संदेश थी।
A.T. जोन्स और E.J. वैगनर द्वारा हमें दिया गया संदेश लाओदीकिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेश है और हाय हर उस व्यक्ति पर जो सत्य को मानने का दावा करता है फिर भी दूसरों की ओर परमेश्वर प्रदत्त किरणों का परावर्तन नहीं करता। The 1888 Materials 1053।
1858 में सातवीं तुरही का संदेश सबसे पहले 1856 में लाओदिकिया को सुनाया गया था और फिर लाओदिकिया के संदेश को सात समय के बढ़ते हुए प्रकाश के संदर्भ में रखा गया। 11 सितंबर 2001 को यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर लौटेना और उन पर चलने के आह्वान ताकि अंतिम वर्षा का संदेश प्राप्त किया जा सके में सातवीं तुरही की चेतावनी का संदेश भी सम्मिलित था, जिसे लाओदिकिया के लिए संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और साथ ही सात समय जो नियवों का प्रतीक है। भविष्यवाणी द्वारा चिन्हित वह झूठ जो पौलुस की रचनाओं में वर्णित प्रबल भ्रम उत्पन्न करता है, भविष्यद्वक्त्री की मृत्यु के 16 वर्ष बाद 31 में लाओदिकियाई एडवेंटिज्म की तीसरी पीढ़ी में स्थापित किया गया। तीसरी पीढ़ी में आया ये झूठ भविष्यवाणी के अनुसार उस काल में स्थित है जिसे तम्मूज के लिए रोती हुई स्त्रियां के रूप में दर्शाया गया है, और इसलिए ये झूठे उत्तर वृष्टि संदेश से संबद्ध है। वह झूठ किस प्रकार फैलाया गया इसके विवरण समझे जाने चाहिए, और अंतकालीन भविष्यवाणी में उस झूठ की भविष्य सूचक भूमिका भी समझी जानी चाहिए। अंतिम वर्षा के समय, जो कि 144,000 पर मुहर लगाए जाने का समय है, यरूशलेम पर शासन करने वाले उपहास करने वाले पुरुषों ने एडवेंटवाद की तीसरी पीढ़ी में एक झूठा अंतिम वर्षा संदेश गढ़ा, जय कि यहेजकेल अध्याय 8 में तम्मूज के लिए रोती हुई स्त्रियां द्वारा दर्शाया गया है। उनका झूठा अंतिम वर्षा संदेश यहेजकेल द्वारा एक झूठी नींव, सुरक्षा की झूठी दीवार और झूठे शांति और सुरक्षा के संदेश के तौर भी दर्शाया गया है।
क्या तुमने व्यर्थ दर्शन नहीं देखा? और क्या तुमने झूठी भविष्यवाणी नहीं कही? जबकि तुम कहते हो, प्रभु ने ये कहा, परंतु मैंने तो नहीं कहा। इसलिए प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, क्योंकि तुमने व्यर्थ बातें की हैं और झूठे दर्शन देखे हैं। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है। और जो भविष्यद्वक्ता व्यर्थ दर्शन देखते और झूठी भविष्यवाणी करते हैं, उन पर मेरा हाथ होगा। वे मेरी प्रजा की सभा में न होंगे, न इसराइल के घराने के लेख में लिखे जाएंगे, और न इसराइल के देश में प्रवेश करेंगे। और तुम जानोगे कि मैं प्रभु परमेश्वर हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रजा को बहकाया है ये कहते हुए शांति, जबकि शांति थी ही नहीं। किसी ने एक दीवार खड़ी की और देखो, दूसरों ने उसे कच्चे गारे से पोत दिया। उनसे जो उसे कच्चे गारे से पोतते हैं कह दो कि वो गिर जाएगी, मूसलाधार वर्षा होगी, और हे बड़े बड़े ओले, तुम गिरोगे, और प्रचंड आंधी उसे फाड़ डालेगी। देखो, जब वो दीवार गिर पड़े, तब क्या तुमसे ये न कहा जाएगा, वह लेपन कहाँ है जिसे तुमने उसे पोता था? इसलिए प्रभु परमेश्वर यों कहता है, मैं अपने क्रोध में प्रचंड आंधी से उसे फाड़ दूंगा, और अपने रोष में मूसलाधार वर्षा होगी, और अपने क्रोध में बड़े बड़े ओले पड़ेंगे, ताकि उसे समाप्त कर दे। इस प्रकार मैं उस दीवार को जिसे तुमने कच्चे गारे से पोता है ढा दूंगा, और उसे भूमि तक गिरा दूंगा, ताकि उसकी नींव प्रकट हो जाए, और वो गिर जाएगी, और तुम उसके बीच में विनष्ट हो जाओगे, और तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूँ। इस प्रकार मैं उस दीवार पर और उन पर जिन्होंने उसे कच्चे गारे से पोता है अपना क्रोध पूरा करूंगा, और तुमसे कहूंगा, वह दीवार अब नहीं रही, और न वे जो उसे पोतते थे, अर्थात इज़राइल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते हैं और उसके लिए शांति के दर्शन देखते हैं, जबकि शांति है ही नहीं। प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है। हेजेकेल 13:7-16।
यशाया के अध्याय 28 और 29 में यरूशलेम के उपहास करने वाले लोग जिस असत्य और झूठ की आड़ लेते हैं, उसका अंततः उमड़ती हुई विपत्ति द्वारा न्याय होता है और वो नष्ट कर दिया जाता है।
मैं न्याय को नाप की डोरी पर और धर्म को सीसे की डोरी पर ठहराऊंगा, और ओले झूठ की शरण को बहा ले जाएंगे, और जल छिपने के स्थान पर उमड़ पड़ेंगे, और तुम्हारा मृत्यु के साथ किया हुआ वाचा निरस्त कर दिया जाएगा, और अधोलोक के साथ किया हुआ समझौता ठहर न सकेगा। जब वो उमड़ती हुई विपत्ति होकर निकलेगी, तब तुम उसके द्वारा रौंदे जाओगे। यशाया 28:17-18।
यशाया का उफनता, प्रकोप, यहेजकेल की उफनती वर्षा ही है जो उन पर आती है जिन्होंने झूठी भविष्यवाणी की है, एक निरर्थक दर्शन प्रस्तुत करके और ये दावा करके कि प्रभु यों कहता है, जबकि प्रभु ने कहा ही नहीं था। वो झूठ जिसके नीचे प्राचीन पुरुष छिपते थे, उसे ऐसी बात के रूप में दिखाया गया है जिसे वे प्रभु के कहे हुए के रूप में पेश करते हैं। इसलिए वो परमेश्वर के वचन के विषय में एक झूठ है, या तो उन्होंने परमेश्वर के वचन के किसी सिद्धांत को गलती ठहराया है, या उन्होंने गलत ढंग से ये दावा किया है कि बाइबल के किसी सिद्धांत के विषय में उनकी समझ को स्वयं परमेश्वर ने निर्देशित किया कि परमेश्वर ने कहा।
1931 में सैम ने आया जूथ तह यह दावा था कि सिस्टर व्हाइट ने डानियल की पुस्तक में द डेली के बारे में गलत दृष्टिकोण का समर्थन किया था। ये गलत दृष्टिकोण की द डेली मसीह की पवित्र स्थान सेवकाई का प्रतिनिधित्व करता है, एक झूठ पर आधारित था जो ये दावा करता था कि 19 तक पर एलन व्हाइट ने एजी डैनियल्स को बताया था कि द डेली को मसीह की पवित्र स्थान सेवकाई के रूप में समझने के बारे में उनका और प्रेस्कॉट का मत वास्तव में सही है, जबकि इसके विपरीत उनकी स्पष्ट लिखित बातें मौजूद थी।
द डेली के बारे में जी गलत धारणा तब 1931 में लाओदीकियाई एडवेंटवाद के भीतर स्थापित की गई, वही वो धर्मशास्त्रीय आधार बन गई जिसका उपयोग एक ऐसा संदेश खड़ा करने में किया गया जिसे यहेजकेल ल शांति और सुरक्षा के रूप में वर्णित करता है। उस झूठे आधार को बनाए रखने के लिए जो विभिन्न तर्क प्रयुक्त होते हैं, वे वही तरह तरह के नकली सिक्के और रत्न हैं जिन्हें मिलर ने अपने स्वप्न में देखा था। स्वप्न के अंत तक उसके मूल रत्न पूरी तरह नकली चीजों और कचरे से ढक जाते हैं, और वो कचरा तथा नकली रत्न और सिक्के उस संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस आधारभूत भूल पर आधारित था कि द डेली मसीह की पवित्र स्थान सेवकाई का प्रतिनिधित्व करता है।
ये हेजकेल के अंश में कूड़ा कचरा और नकली रत्नों को एक दीवार के रूप में दर्शाया गया है जो ऐसे सीमेंट से बनाई गई है जो इतना कमजोर है कि तूफानी हवा या उमड़ती बरसात के दबाव में टिक नहीं सकती।
यहूदा का वो अवज्ञाकारी नबी जिसने यारोबाम को फटकारा था, अंततः एक गधा और एक सिंह के बीच मर गया। सिंह बाबुल का प्रतीक है और गधा इस्लाम का प्रतीक है। वे दो सिद्धांत जिन्हें लाओदिकियन एडवेंटवाद देख नहीं पाता और जो उस अवज्ञाकारी नबी की मृत्यु द्वारा दर्शाए गए हैं, ये है पोप सत्ता का संदेश सिंह और इस्लाम की तीसरी हाय का संदेश गधा।
यहेजकेल का तूफानी पवन यशाया के रोक दिए गए कठोर पवन का प्रतीक है जिसका उल्लेख अध्याय 27 में पूर्वी पवन के दिन के रूप में है। यहेजकेल का तूफानी पवन प्रकाशित वाक्य के अध्याय 7 के 4 पवन भी हैं जिन्हें तब तक रोके रखा गया है जब तक परमेश्वर के दासों पर मुहर न लग जाए। यहेजकेल का तूफानी पवन अध्याय 37 में 4 पवन से आया उसका संदेश भी है जो मरी हुई सूखी हड्डियों को जीवित कर एक शक्तिशाली सेना बना देता है। यहेजकेल का वही तूफानी पवन जो कच्चे गारे से बनी दीवार को गिरा देता है तीसरे हाय की अंतिम वर्षा का संदेश है।
यहेजकेल की मूसलाधार वर्षा पोप तंत्र का प्रतीक है और अधिक विशिष्ट रूप से ये संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से आरंभ होने वाले रविवार कानून संकट के काल का प्रतीक है। यहूदा का वो अवज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता जो गधे और सिंह के बीच मरा लौदीकियाई एडवेंटवाद की उस मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है जो 11 सितंबर 2001 को गधे तीसरी विपत्ति के आगमन से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून सिंह के बीच घटित होती है। लौदीकियाई एडवेंटवाद की मृत्यु उन 1,44,000 की मुहरबंदी के दौरान होती है जो तब आरंभ हुई जब राष्ट्र क्रोधित तो हुए परंतु 11 सितंबर 2001 को रोके रखे गए और जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर समाप्त होती है। उनकी मृत्यु जैसा कि उस अवज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता द्वारा दर्शाया गया इसलिए होती है क्योंकि वे धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की पद्धति में लौट आए, यद्यपि उन्हें स्पष्ट रूप से ये बताया गया था कि कभी भी ठट्ठा करने वालों की सभा में वापस न लौटें।
उनकी मृत्यु 1,44,000 पर मोहर लगने के इतिहास में घटित होती है
जैसे ही परमेश्वर की प्रजा पर मोहर लग जाती है, नाश करने वाले स्वर्गदूत अपना काम आरंभ कर देते हैं। 11 सितंबर 2001 से लेकर जल्द आने वाले रविवार के कानून तक जीवितों का न्याय परमेश्वर की कलीसिया में संपन्न होता है, क्योंकि न्याय यरूशलेम से आरंभ होता है और वो उन प्राचीन पुरुषों से आरंभ होता है जो लोगों के रक्षक होने चाहिए थे, परंतु जिन्होंने चार पीढ़ियों के दौरान अपनी जिम्मेदारियां त्याग दी थीं। उस अवधि में जिन पर मुहर लगती है वे वो ध्वज है जो जातियों के सामने ऊंचा किया जाता है। उन पर जल्द आने वाले रविवार के कानून से पहले मुहर लगाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर की अन्य भेड़बाड़ को चेतावनी देने का एकमात्र तरीका यही है कि रविवार कानून के संकट में परमेश्वर की मुहर वाले स्त्री से पुरुष दिखाई दे।
पवित्र आत्मा का कार्य जगत को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराना है। जगत को केवल तभी चेतावनी दी जा सकती है जब वो उन लोगों को जो सत्य पर विश्वास करते हैं, सत्य के द्वारा पवित्र किए हुए उच्च और पवित्र सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हुए और परम उच्च उदात्त अर्थ में उन लोगों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा प्रदर्शित करते हुए देखे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उन लोगों के बीच जो उन्हें अपने पैरों तले रौंदते हैं। आत्मा का पवित्रीकरण उन लोगों के बीच के भेद को चिह्नित करता है जिन पर परमेश्वर की मुहर है और उन लोगों के बीच जो एक मिथ्या विश्राम दिन मानते हैं। जब परीक्षा आएगी तब ये स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा कि पशु का चिन्ह क्या है। वो रविवार का पालन करना है। जो लोग सत्य को सुन लेने के बाद भी इस दिन को पवित्र मानते रहते हैं वे पाप के उस मनुष्य की छाप धारण करते हैं जिसने समयों और व्यवस्था को बदलने का विचार किया था। बाइबल ट्रेनिंग स्कूल, December 1, 1903।
लाओदिकियन एडवेंचिस्ट के मृत्यु अंतिम वर्ष के इतिहास के दौरान पूर्ण होती है जो 11 सितंबर 2001 को फुहार रूप में शुरू हुई थी और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय अपरिमित रूप से उंडेली जाएगी, जब परमेश्वर एक ऐसी प्रजा को जिसे अनंत काल के लिए मुहरबंद किया गया है स्थापित कर चुका होगा और फिर उसे ध्वज के समान ऊंचा उठाएगा। उस काल में लाओदिकिया एडवेंटिज्म के वे लोग जो पशु का चिन्ह पाने की तैयारी कर रहे हैं और उसे प्राप्त करेंगे, यहीजकेल के 8वें अध्याय में सूर्य को प्रणाम करते हुए 25 पुरुषों द्वारा दर्शाए गए हैं। वे हैं जिन्होंने यहीजकेल का झूठा शांति और सुरक्षा संदेश स्वीकार किया है, जो उस इतिहास में सच्चे पहरेदारों द्वारा प्रचारित किए जा रहे सच्चे पश्चात वर्षा संदेश का एक नकली प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। उस झूठा पश्चात वर्षा संदेश की नींव ये पहचान है कि दानियल की पुस्तक में नित्य मसीह का प्रतीक है, जबकि वास्तव में वो शैतान का प्रतीक है। वही झूठा आधारभूत विश्वास वो सिद्धांत है जिसका उपयोग यरूशलेम के लोगों पर शासन करने वाले, उपहास करने वाले मनुष्य अपनी बिना पक्के गारे की दीवार खड़ी करने के लिए करते हैं। द डेली कोमसेले के प्रतीक के रूप में पहचानना ऐतिहासिक रूप से 1831 में एक झूठ के द्वारा स्थापित किया गया था। तब से नकली सिक्कों और जवाहरात की कच्ची दीवार खड़ी कर दी गई। वो दीवार तब गिरने के लिए नियत है जब धूल झाड़ने वाला व्यक्ति आएगा और अपने फर्श को पूरी तरह साफ करेगा। ये शुद्धिकरण उस भविष्यवाणी संबंधी ऐतिहासिक काल में पूरा होता है जो तूफानी हवा 11 सितंबर 2001 का गधा और उमड़ती बौछारें शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का सिंह के बीच है। उस इतिहास में अवज्ञाकारी नबी को मार दिया जाता है और बेतल के झूठे नबी की कब्र में दफनाया जाता है। बहन व्हाइट भविष्यवाणी की दी बार को परमेश्वर की व्यवस्था के रूप में पहचानती है।
यहाँ नबी उन लोगों का वर्णन करता है जो ऐसे समय में जब सामान्य रूप से लोग सत्य और धर्म से भटक गए हों परमेश्वर के राज्य की नींव बने सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे परमेश्वर की व्यवस्था में किए गए भंग के मरम्मत करता है। वह दीवार जिसे उसने अपने चुने हुओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर खड़ी की है और जिसकी न्याय सत्य और पवित्रता की आज्ञाओं का पालन ही उनकी चिरस्थायी सुरक्षा है। स्पष्ट शब्दों में भविष्यद्वक्ता उस शेष प्रजा के विशेष कार्य को बताता है जो दीवार बनाती है। यदि तू सप्त के दिन अपना पांव रोक रखे, मेरे पवित्र दिन में अपनी मनमानी न करे और सप्त को प्रसन्नता का दिन कहे, यहोवा के पवित्र दिन को आदरणीय माने और उसका आदर करे, अपने मार्गों पर न चले, अपनी प्रसन्नता न खोजे, अपनी ही बातें न बोले, तब तू यहोवा में आनंदित होगा और मैं तुझे पृथ्वी की ऊंचाइयों पर सवारी कराऊंगा और तेरे पिता याकूब की विरासत से तुझे पालूंगा, क्योंकि यहोवा के मुख ने ये कहा है। यशाया 13:4 भविष्य वक्ताओं और राजाओं 77:17।
एडवेंटवाद की चौथी पीढ़ी की शुरुआत एक पुस्तक के प्रकाशन से चिन्हित है, जैसे कि तीसरी पीढ़ी की शुरुआत भी एक पुस्तक के प्रकाशन से हुई थी। तीसरी पीढ़ी W.W. प्रेस्कॉट की पुस्तक द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के प्रकाशन से शुरू हुई और वो पीढ़ी क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन के प्रकाशन के साथ समाप्त हुई। द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट ने ऐसा सुसमाचार प्रस्तुत किया जो जानबूझकर मिलराइट भविष्यवाणी संदेश से रहित था। क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन ने ऐसा सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसने मसीह द्वारा संपन्न किए जाने वाले पवित्रकरण के कार्य को नकार दिया। द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट ने भविष्यवाणी के इतिहास की क्षयजन दृष्टि का प्रकाश हटा दिया और क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन ने मसीह के अपीयरेंस की मारे दृष्टि का प्रकाश हटा दिया। उन दो पुस्तकों के बीच तम्मूज के लिए रोती स्त्रिया द्वारा निरूपित झूठा अंतिम वर्षा संदेश विकसित हुआ। उसी इतिहास में 1931 का झूठ को बढ़ावा दिया गया। वो तीसरी पीढ़ी घृणितता का प्रतिनिधित्व परगामुस की तीसरी कलीसिया के समझौते से भी होता है। तीसरी कलीसिया में समझौते का प्रतीक उन सांसारिक संस्थाओं से मान्यता पाने के कार्य की पहचान कराता है जो धर्मशास्त्र और चिकित्सा के लिए नियम थोपती थीं। तीसरी पीढ़ी में ही सत्य के साथ समझौता पूरा हुआ जिसमें भ्रष्ट पांडुलिपियों से अनुदित बाइबलों के उपयोग की शुरुआत और उस पर जोर देना शामिल था। 1957 में क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन नामक पुस्तक ने सुसमाचार के मूल सत्य के प्रति आत्मसमर्पण का प्रतिनिधित्व किया। वह सत्य यह है कि यीशु हमें पाप से बचाने के लिए मरे, परंतु वे हमें पाप में बचाने के लिए नहीं मरे। कैथोलिक और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट ये शिक्षा कि मनुष्य परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी नहीं हो सकता, शैतान का शाश्वत तर्क है। मनुष्य परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी हो सकता है और होना भी चाहिए, भले ही शैतान ये कहे कि तुम निश्चय ही न मरोगे। ये पतित धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट दृष्टि कि मनुष्य पाप पर विजय नहीं पा सकता और इसलिए यीशु अपने दूसरे आगमन पर उन्हें किसी जादुई ढंग से आज्ञाकारी रोबोटों में बदल दे, तब तक मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था के आज्ञाकारी नहीं हो सकते, क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन पुस्तक की शिक्षाओं में शामिल कर दी गई थी। 1957 में लाओदीकियाई एडवेंटवाद की चौथी पीढ़ी आरंभ हुई और उसकी बिना चुने से पूती दीवार व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। इस प्रकार वो तर्क उपलब्ध हो गया जो 144,000 की मुहरबंदी के समय के समापन पर 25 प्राचीन पुरुषों को सूर्य के आगे झुकने की अनुमति देगा। वो बिना चुने से पूती दीवार जो ये विश्वास है कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना असंभव है, तब बहा दी जाती है जब कलीसिया और राज्य के पृथककरण की दीवार शीघ्र आने वाले रविवार के कानून में हटा दी जाती है। रविवार का कानून उमड़ती हुई वर्षा है, या जैसा यशाया कहता है वो उमड़ती हुई बाढ़ है, और वो बाढ़ संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के साथ आरंभ होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय शत्रु पोप सैलाब की तरह उफनती विपत्ति आ घुसता है और तभी उसके विरुद्ध ध्वज उठाया जाता है। उसी समय वो बिना गारे की दीवार जिसे लाओदीकियाई एडवेंटिज्म ने दैनिक के गलत अनुप्रयोग पर खड़ा किया था बहा दी जाती है।
उनके कर्मों के अनुसार वैसे ही वो बदला देगा, अपने विरोधियों पर क्रोध, अपने शत्रुओं को प्रतिदान, द्वीपों तक को वो प्रतिदान देगा। तब वे पश्चिम से प्रभु के नाम का भय मानेंगे और सूर्योदय के स्थान से उसकी महिमा का आदर करेंगे। जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा, तब प्रभु का आत्मा उसके विरुद्ध ध्वज उठाएगा और उद्धारकर्ता सियोन में आएगा और याकूब में जो अधर्म से फिरते हैं उनके पास। प्रभु की यह वाणी है, मेरे विषय में उनके साथ मेरी वाचा ये है, प्रभु कहता है, जो मेरी आत्मा तुझ पर है और जो मेरे वचन मैंने तेरे मुख में रखे हैं, वे न तो तेरे मुख से, न तेरी संतान के मुख से, न तेरी संतान की संतान के मुख से हटेंगे, अब से लेकर सदा तक। प्रभु का यही वचन है। उठ, चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तेरे ऊपर उदय हुई है। क्योंकि देख, अंधकार पृथ्वी को ढक लेगा और घोर अंधकार लोगों को, परंतु तेरे ऊपर प्रभु उदय होगा और उसकी महिमा तेरे ऊपर प्रकट होगी, और अन्य जातियां तेरे प्रकाश की ओर आएंगी और राजा तेरे उदय की चमक की ओर। यशाया 59:18-13।
जब परमेश्वर की महिमा उसकी प्रजा पर होती है, तब अन्य जातियां ज्योति की ओर आती हैं, और ये तब होता है जब शत्रु बाढ़ की तरह उमड़ पड़ता है। जब वो शत्रु आता है तो परमेश्वर उसके विरुद्ध एक ध्वज झंडा खड़ा करता है। प्रभु की वो महिमा जो उन लोगों पर है जिनकी ओर अन्य जातियां आती है, वो उसका स्वभाव है और उसका स्वभाव पाप नहीं करता। ये शांति और सुरक्षा का एक झूठा संदेश है जो सिखाता है कि पुरुष और स्त्रियां पाप पर विजय नहीं पा सकते। वो संदेश अंतिम वर्षा का एक झूठा संदेश है जो सच्चे अंतिम वर्षा संदेश के समय में सुनाया जाता है, जो 11 सितंबर 2001 को आया। वो झूठा संदेश परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में एक झूठा संदेश है जो कि दीवार है। वो झूठी शिक्षा क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन नामक पुस्तक में प्रस्तुत है, जिसने लाओदीकियाई एडवेंटिज्म की चौथी और अंतिम पीढ़ के आगमन को चिह्नित किया। 11 सितंबर 2001 को लाओदीकियाई एडवेंटिज्म के चार विद्रोह अपने पितरों के पापों के साथ उस अंतिम पीढ़ी की परीक्षा लेने आ पहुंचे। उसी दिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा को यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर लौटने का निर्देश दिया, ताकि वे मिलर के रत्नों के रूप में प्रस्तुत आधारभूत संदेश को समझें और स्वीकार करें। यदि वे ऐसा करते तो उन्हें पश्चात की वर्षा मिलती, जिसे यिर्मयाह ने विश्राम कहा। पुराने मार्गों पर लौटने का ये आह्वान उसी परीक्षा की पुनरावृत्ति था जिसने 1863 के विद्रोह को जन्म दिया। 11 सितंबर 2001 को, जो यशायाह का पूर्वी और प्रचंड पवन का दिन है, दाख की बारी का गीत उन लोगों द्वारा गाया जाना था जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 14:3 में और अध्याय 15:3 में मूसा और मेमने का गीत गाते हैं। वो गीत लाओदीकिया का संदेश है जो ये पहचान कराता है कि पहले के चुने हुए लोगों को तब एक और किया जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर तब अपनी दाज की बारी उन पुरुषों और स्त्रियों को देने की प्रक्रिया में थे जो उस दाख की बारी के अभिप्रेत फल लाएंगे। वो दाख बारी का संदेश लाओदीकिया के नाम संदेश है जो 1828 के विद्रोह समय जोन्स और वैगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 11 सितंबर 2001 को अंतिम वर्षा आरंभ हुई, और हबकूक के दूसरे अध्याय की बहस में एक ऐसा वर्ग पहचाना जाता है जिसने दो पट्टिकाओं का संदेश प्रस्तुत किया, क्योंकि वे यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर लौट आए थे और विश्राम और ताजगी प्राप्त कर रहे थे, जो यशायाह के अनुसार ये उन पर आता है जिनकी कार्य पद्धति रेखा पर रेखा है। जिस बहस में वे शामिल थे वो एक झूठे अंतिम वर्षा संदेश के विरोध में थी, जिसका प्रतीक तमूज के लिए रोती स्त्रियां थीं जो सोए हुए लाओदीकियाई लोगों को शांति और सुरक्षा के संदेश से दिलासा देती थीं। शांति और सुरक्षा का संदेश ये दावा करता है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए पाप न करना असंभव है, और इसलिए परमेश्वर केवल उनके पापों में ही उन्हें धर्मी ठहरा सकता है और ठहराएगा। उपहास करने वाले पुरुष दावा करते हैं कि उनका शांति और सुरक्षा का संदेश वही सच्चा विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का संदेश है जिसे जोन्स और वैगनर ने प्रस्तुत किया था, परंतु ये उस सच्चाई को छोड़ देता है कि जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराता है उसे वो पवित्र भी करता है, क्योंकि परमेश्वर लोगों को उनके पापों में बचाने के लिए नहीं मरे बल्कि उनके पापों से बचाने के लिए मरे। 11 सितंबर 2001 ने 144,000 की मुहरबंदी की अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक वर्ग परमेश्वर की मुहर प्राप्त करता है जिसका प्रतिनिधित्व उन लोगों द्वारा होता है जो कलीसिया और देश में हो रही घृणित बातों के कारण आहे भरते और रोते हैं, और दूसरा वर्ग
जिसने उस मंदिर की ओर पीठ कर ली है जहां तीसरे स्वर्गदूत का अंतिम कार्य पूरा किया जा रहा है और वे सूर्य के आगे झुक रहे हैं। मिलराइटों का इतिहास तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन के इतिहास को दर्शाता है और ऐसा करते हुए उसकी पराकाष्ठा अंतिम वर्षा के संदेश तथा उस अनुभव पर है जो वो उनमें उत्पन्न करता है जो उसे ग्रहण करना चुनते हैं। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
पूर्व धारणाओं को त्यागने और इस सत्य को स्वीकार करने की अनिच्छा मिनियापोलिस में भाइयों वैगनर और जोन्स के माध्यम से आए प्रभु के संदेश के विरुद्ध प्रकट हुए विरोध के बड़े हिस्से की जड़ में थी। उस विरोध को भड़काकर शैतान ने हमारे लोगों से बहुत हद तक पवित्र आत्मा की उस विशेष शक्ति को दूर रखने में सफलता पाई जिसे परमेश्वर उन्हें प्रदान करने के लिए लालायित था। शत्रु ने उन्हें उस दक्षता को प्राप्त करने से रोका जो सत्य को संसार तक पहुंचाने में उनकी हो सकती थी, जैसा कि प्रेरितों ने पेंतेकोस्त के दिन के बाद उसे घोषित किया था। वो प्रकाश जो अपनी महिमा से समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला है, उसका विरोध किया गया और हमारे ही भाइयों की कार्रवाई से वो बहुत अंश तक संसार से दूर रखा गया है। चुने हुए संदेश, पुस्तक 1, 513 पाइश।